ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान सरोवर परिसर में आकर आप सभी योग बट्टी कर रहे हैं। बहुत सुंदर विषय इस भट्टी का है, विघ्न विनाशक कैसे बने, विघ्न विनाशक स्थिति। अभी अभी 31 तारीख को गणपति गणेश चतुर्थी थी, विघ्न विनाशक गणेश जी को कहते हैं, शिव बाबा का पुत्र, और हम सभी शिव के बच्चे हैं, तो सभी विघ्न विनाशक है ना, सभी विघ्न विनाशक हैं या कभी कभी विघ्न लाने वाले हैं या कभी कभी विघ्नों का आह्वान करने वाले हैं, क्योंकि हमारी कमजोरियों से ही तो विघ्न आते हैं। माया क्या है, हमारी ही तो कमजोरी है, और अगर हम कहते हैं माया विघ्न लाती है तो माना हमारी कमजोरी ही हमारा विघ्न लाती है। तो इन विघ्नों को जीतेंगे भी तो हम अपने ही बल से और बाबा की याद से, सबकी दुआओं से। तो सबकी दुआएं अगर हमें मिल जाए और उसमें बाबा की याद समाई हुई हो, बाबा से शक्ति लेते रहें, तो विघ्नों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने विषय चुना है बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स। जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है, संतुलन बनाए रखना। बाबा कहते हैं सिर पर भले बैलेंस नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, कोई शीर्षासन करते हैं ना, सिर पर खड़े हो जाते हैं, पैर पर खड़े हैं वो तो सहज है, पर सिर पर खड़े होना ये मुश्किल तो है। लेकिन बाबा कहते उसकी जरूरत नहीं है, सिर पर जरूरत नहीं है, संतुलन बनाना, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है ना, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकती है, गर्दन में दर्द भी हो सकता है, लेकिन जीवन में संतुलन बना के रखना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉट बैलेंस ऑन हेड बट बैलेंस ऑफ माइंड, मन का संतुलन, हर परिस्थिति में संतुलित रहना, अपने भावनाओं को भी संतुलित रखना, अपना विवेक भी चलाना। और कल इस पर बाबा की बहुत सुंदर मुरली चली थी, ज्ञान में भावना हो और स्नेह में योग हो। तो ज्ञान और भावना, कई बार लगता है कि ये दोनों अलग चीजें हैं। मनुष्य को जब बहुत ज्ञान आ जाता है तो उसकी भावना खत्म हो जाती है कई बार, क्योंकि ज्ञान माना समझता है तर्क, तो हर चीज तर्क से वो जवाब चाहता है, लेकिन कई बातें तर्क से नहीं समझाई जा सकती है, वो भावना से ही समझ सकते हैं। वैसे भी मानेंगे कि विश्वास, आस्था, या अंदर में जो कुछ भी हम सोचते हैं वो अच्छी बातें हैं, लेकिन उसमें अंधविश्वास नहीं चाहिए। अंधविश्वास आ गया, अंधश्रद्धा आ गई, आस्था है लेकिन वो अंधी आस्था है, तो वो फिर सही नहीं है। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि भावना तो ठीक है, लेकिन उसमें विवेक का भी प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि विवेक का जब प्रयोग करते हैं तो वो अंध शब्द समाप्त हो जाता है। नहीं तो सत्वचन महाराज जो गुरु जी ने कहा ठीक है ठीक है, बिना सोचे समझे, तो सत्वचन महाराज भी न हो, सही ज्ञान भी हो, सत्य ज्ञान हो और साथ में भावना हो, जिसको कहते हैं विवेक और भावना का बैलेंस। परमात्मा का परिचय भी जब हम देते ना शिविर में, तो हम यही कहते हैं कि तर्क ईश्वर का विषय, तर्क का विषय नहीं है। क्यों तर्क का विषय नहीं है? क्योंकि आप प्रमाण क्या देंगे? विज्ञान में तो प्रमाण मांगते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, दिखाई दे तब माने, वो हमारे सामने दिखाई दे, और ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए तर्क से ईश्वर को हम माने ये नहीं होगा, उसके लिए भावना चाहिए। पर भावना के साथ बुद्धि भी तो हो ना, बुद्धि भी तो सही रूप से हम यूज करें। इसलिए अंधविश्वास अंधश्रद्धा नहीं, पर समझ के साथ भावना, इसको कहेंगे ज्ञान सहित भावना। तो बाबा ने ये हमें बैलेंस सिखाया है। हमें केवल शिव बाबा में भावना नहीं है, लेकिन ज्ञान भी पूरा है, कौन है वो, क्या करता है क्या नहीं करता, और उसी अनुसार वो भावना रखकर हम उनको याद करते हैं, उसी स्नेह के साथ याद करते हैं। याद केवल पुकार नहीं है, क्योंकि पुकार में शायद स्नेह न भी हो, पुकार में स्वार्थ भी हो सकता है। हे भगवान अब तुम ही मेरे रक्षक हो, भले भगवान में विश्वास न भी करता हो, लेकिन जब ऐसा विघ्न आया तो भगवान के सिवाय कौन याद आता है। पर स्नेह युक्त याद हो और ज्ञान सहित भावना हो, इसको कहते बैलेंस। बैलेंस रखना एक बहुत बड़ी कला है, एक कला है। कैसे कला है? पहले जमाने में आपको पता है ना, नट होते थे, नुक्कड़ पर वो अपना कार्य दिखाते थे। एक रस्सी बांध देते थे दो पिलर्स पर, दो बांस की लकड़ियां लेकर दोनों तरफ एक रस्सी बांधते थे और उस रस्सी पर चलते थे, और लोग दूर दूर से देखते रहते थे कैसे रस्सी पर चल रहा है। लेकिन रस्सी पर चलना, इतनी पतली रस्सी पर चलना और गिरना नहीं, ये बहुत बड़ी कला है। मनुष्य तो चलते चलते भी गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है, और कोई नट होता वो रस्सी पर भी गिरता नहीं है, और उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। टिकट भी होती है ना, सर्कस होती है, कैसे उसमें बैलेंस बनाते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, टिकट खरीदते हैं। बैलेंस का ही शो होता है, सर्कस क्या होता है। तो क्या आधार है उस बैलेंस का? पहले तो लक्ष्य पक्का हो, मुझे उस छोर पर पहुंचना है, ये पहला कदम है बुद्धि में, वहां पहुंचना है मुझे। फिर दूसरा क्या हो? अंदर में विश्वास हो कि मैं अवश्य पहुंचूंगा, पहुंचूंगा, अवश्य पहुंचूंगा। फिर तीसरा क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान यहां से वहां हटा तो दुर्घटना हो सकती है, गिर सकता है। तो पूरी ही एकाग्रता हो, लक्ष्य पक्का हो, विश्वास हो कि जरूर पहुंचेंगे, एकाग्रता हो। और फिर अभ्यास भी बहुत जरूरी है। पहली बार तो हो सकता है ना भी कर सके, कई बार गिरेगा चढ़ेगा और फिर सफल हो जाएगा। मिसाल देते ना, एक राजा था, वो युद्ध में हार गया और जब हार करके वापस लौट ही रहा था तो एक पहाड़ था छोटा सा, उसके पास बैठ गया दुखी होकर कि मैं हार गया। तो देखा एक मकड़ी कैसे ऊपर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, और वो देखता रह गया कि कितना गिर रही है फिर चढ़ रही है। लेकिन फिर आखिर वो चढ़ी गई, चढ़ते गिरते आखिर चढ़ गई। तो कहा कि मैं एक बार ही हार गया तो मैं निराश हो गया, अब मैं फिर जाऊंगा। तो फिर गया और जीत लिया। कहानियां हैं। तो जीवन में निराशा बहुत आ सकती है और इसका कारण यही है कि लक्ष्य पक्का नहीं है। और बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा लक्ष्य क्या दिया है? मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति दूंगा, तुम बस दौड़ो, इस रेस में दौड़ो। आज बाबा ने यही कहा, रेस में दौड़ो। बाबा मेरे साथ हैं और एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। तो दौड़ना है मुझे, घर पहुंचना है, फिर नई दुनिया में आना है। ये लक्ष्य बाबा ने दिया है। और इस ये दौड़ कोई वो फिजिकल नहीं है, कोई कोई टांगों की दौड़ नहीं है, ये बुद्धि की दौड़ है। और उसके लिए कौन सा कदम उठाना है? देही अभिमानी बनना है, आज की मुरली। तो देही अभिमानी होकर इस दौड़ में दौड़ना है और मंजिल तक पहुंचना है। तो जब बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं, फिर देखते हैं माया कैसे विघ्न डालती है। हम माया को दोष न देकर के खुद से पूछें कि सही वक्त पर सही कार्य हम करते हैं, क्योंकि बैलेंस माना सही समय पर सही कार्य। बैलेंस पे दो जो पाते हैं वो अपोजिट है। अब कभी बाबा कहेंगे कि बालक बन जाओ, बच्चे हो तुम, कभी बाबा कहेंगे नहीं तो मालिक हो। तो बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है। लेकिन बालक कब बनना है, मालिक कब बनना है, वही बाबा बताते हैं। बालक बनने समय हम मालिक बने तो और तो गई सही नहीं होगा, और मालक मालिक बनने समय बालक बन जाए तो भी सही नहीं होगा। तो बाबा बताते हैं बालक कब बनो, जब संगठन में हो, बालक बालक बन जाओ। हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं, अपना बड़ापन मत दिखाओ, क्योंकि जो मेजॉरिटी होगी वही वही सही होगी। अब मैं एक ही अगर लड़ता रहूंगा, नहीं मैं सही हूं, तो कहां मेरी बात मानी जाएगी? दूसरे तो कोई भी नहीं मान रहे हैं। तो बाबा कहते मालिक बन के राय दो भले, ये भी नहीं कहो मैं तो कोई राय नहीं दूंगा, मेरी कोई बात सुनता थोड़ी है। मेरी कोई बात सुनता नहीं है क्योंकि मैं मालिक हूं और मेरी राय कोई नहीं सुनता तो मैं दूंगा ही नहीं। नहीं, मालिक बन के राय दो, आपसे पूछा गया है राय दो, परंतु केवल आपकी तो राय नहीं है ना, औरों की भी राय है, और बालक बन करके उसको स्वीकार करो। बालक बन के राय नहीं दे सकते, मैं तो छोटा हूं मैं क्या राय दूंगा, पर मालिक बन के राय दो। और बालक बन के स्वीकार कर लो, ये भी नहीं कि मैंने राय दी वो क्यों नहीं मानी गई, अभिमान नहीं दिखाना है। अगर अभिमान दिखाएंगे तो आगे से आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, भाई ये बात, ये तो अभिमान ही दिखाता, कहेगा मैं जो कहता हूँ वही हो, जरूरी नहीं है। कही है ना, कहते बस मुझे बाबा की इंट्यूशन आई है, बाबा की प्रेरणा मिली है कि ये काम करना है, बाबा की प्रेरणा मिली है, बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है, बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है। और जब वो अपनी बात वो सुनाता है दूसरे को, वो दूसरा तो स्वीकार ही नहीं करता है, वो कहेगा नहीं ये गलत है, ये ठीक नहीं है। वो कहेगा नहीं बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है। तो कई हमसे प्रश्न करते हैं कि अगर बाबा, अगर मैं समझती हूँ, समझता हूँ ये बाबा ने प्रेरणा दी है, और कोई कहे नहीं है ये बाबा की प्रेरणा, मैं कैसे समझूँ ये मेरी मनमत है या ये बाबा की प्रेरणा है, क्योंकि मनमत भी तो बहुत होती है ना। है मेरी मनमत, आज भी बाबा ने कहा रेस में दौड़ रहे हैं, फिर थोड़ी अपनी मनमत चला ली तो पीछे चले गए, दूसरों को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उसमें टाइम चला गया तो पीछे रह गए, और पीछे वाले आगे चले गए, वो किसी को नहीं देखते हैं। इसलिए बाबा जो पुराने हैं उनसे भी नए आगे जाते हैं, ये भी बाबा बताते हैं, क्योंकि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाते हैं, क्योंकि वो किसी और को नहीं देखते हैं। कई कहते हैं ना कि हम लास्ट में आए हैं फास्ट कैसे जाएं, तो बाबा कहते किसी और को मत देखो, बाबा ने मंजिल बताई है। तो बाबा की प्रेरणा है ये हम कैसे माने, हम अवश्य दूसरों को कहेंगे ये मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, पर दूसरा उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तीसरे को कहा उसने भी स्वीकार नहीं किया, तो आप अपने हट पर नहीं रहो, नहीं नहीं मैं तो बाबा की प्रेरणा मुझे मिली है, वो बाबा की प्रेरणा नहीं है। अगर बाबा की प्रेरणा होती तो केवल आपको ही क्यों मिलती, उसको ही मिलती, उनको ही मिलती, औरों को ही मिलती। और बाबा की प्रेरणा नहीं है इसलिए उनको नहीं मिली, ये तो आपकी मनमत है। और फिर कई सोचते नहीं नहीं बाबा की प्रेरणा मैं करूंगा, और करने लग भी पड़ते हैं और विघ्न आते हैं, फिर विघ्न भी तो आते हैं क्योंकि है तो मनमत ना। अगर सचमुच वो बाबा की प्रेरणा होती तो विघ्न नहीं आते, सरल हो जाता रास्ता, ये समझ लो। इसलिए बाबा की प्रेरणा आना ये बहुत ऊंची बात है, उसके लिए लाइन एकदम क्लियर चाहिए, निस्वार्थ सेवा चाहिए, सच्ची भावना चाहिए, दिल साफ चाहिए, तब बाबा की भावनाएं कैच कर सकते हैं, प्रेरणाएं कैच कर सकेंगे, नहीं तो मनमत ही कहलाई जाएगी। और विघ्न आ रही है तो बात को छोड़ दो, पर छोड़ भी देना चाहिए बालक बन करके, ऐसे नहीं मैं बाबा की प्रेरणा मिली है, बाबा को साथी तो बनाया लेकिन है मनमत। तो कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बाबा को साथ रखना है, कहाँ उस विवेक को चलाना है, ये सब बैलेंस है जीवन में, बैलेंस। फिर बाबा कहते हैं अंतर्मुखी भी बनना है, अंतर्मुखी भी बनना है, हर्षित मुख भी बनना है। कई बार लगता है कि अंतर्मुखी हो तो हर्षित मुख कैसे बनो, दोनों कैसे आएंगे गुण, या तो हर्षित मुख है या तो अंतर्मुख है। अगर अंतर्मुख है तो अंदर में देख रहे हैं, हर्षित मुख तो बाहर है। लेकिन हर्षित मुक्ता का मतलब ये नहीं है कि बाह्य मुक्ता, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बोलना, वो बाह्य मुक्ता है। हर्षित मुक्ता माना जैसे देवताओं को हम देखते हैं, चेहरा कितना हर्षित है, पर जितने ही हर्षित दिखाई देते उतने अंतर्मुखी भी दिखाई देते हैं, चेहरा उनका सारे गुण झलकाता है। तो अंतर्मुखी भी हैं, देही अभिमानी स्थिति भी है, और फिर कर्म में भी आ रहे हैं। ये नहीं कि अंतर्मुखी मुझे बनना है, देही अभिमानी होके रहना है तो मैं कर्म नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा एक जगह, वो भी नहीं, कर्म भी करना है। कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए, कर्म भी करो और योग में भी रहो। कई समझते बस कर्म से ही योग है, बस उस कर्म में ही फंसे रहना है, लेकिन बाबा कहते कर्म में फंसो मत, क्योंकि फंसेंगे तो दुखी होंगे। कर्म करो, जिम्मेदारी निभाओ, फंसो नहीं, छोड़ो भी नहीं कि कर्म नहीं करना इसलिए छोड़ देना वो कर्म, छोड़ो भी नहीं पर फंसो भी नहीं, ये बैलेंस है। कर्म भी करो और न्यारे भी रहो, एक सेकंड में न्यारे भी हो जाओ। कछुए का मिसाल बाबा देते हैं ना, कैसे एक सेकंड में न्यारा हो जाता है। तो फंसना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं, ये कितना सुंदर बैलेंस है। कार्य भी करना है, जिम्मेदारी भी निभानी है, और साथ साथ न्यारा भी होके रहना है। न्यारा और प्यारा दोनों रहना, लेकिन किस समय न्यारा किस समय प्यारा, वो फिर निर्णय शक्ति सही चाहिए। जब न्यारा बनना हो तो प्यारा बन जाए, खूब जोर जोर से हंसे, और जब सबके साथ हंसना है उस समय हम ऐसे मूड ऑफ करके बैठ जाएं, वो भी गलत, वो भी गलत, दोनों ही गलत। तो क्या सही है क्या गलत है, वो बाबा कहते बैलेंस के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। तो जब बाबा हम बच्चों को इस प्रकार की बातें सुनाते हैं तब महसूस होता है कि हम पहले क्या करते थे और अभी बाबा ने क्या सिखाया है। जब बाबा कहते तुम अपने आप को सशक्त बनाओ, तो अपने आप को सशक्त बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम बाह्य रूप से सशक्त हो जाएं, क्योंकि बाह्य सशक्तिकरण बहुत है, धन भी शक्ति देता है, तो हम धन के पीछे ही लगे रहें क्योंकि सशक्त बनना है। दुनिया में कई प्रकार की शक्तियां हैं, धन की शक्ति है, लोगों की शक्ति है, मशीनों की शक्ति है, बाहुबल की शक्ति है, हथियारों की शक्ति है, वो भी शक्ति है, लेकिन वो सब है बाह्य रूप। तो बाह्य रूप की जो शक्ति बाबा कहते हैं वो सब दुखदायी है, वो विनाशी है, और जहां वो विनाशी बनी एक दिन वो नष्ट हो गई तो दुखी देगी। इसलिए बाह्य मुखी होकर सशक्त होने का लक्ष्य मत रखो, लेकिन आंतरिक रूप से सशक्त हो जाओ कि कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आए मैं उस परिस्थिति का सामना कर सकूं, उस परिस्थिति को या व्यक्ति को सहन कर सकूं। अब ये भी दो शक्तियां हैं, एक सहन शक्ति, एक सामना करने की शक्ति है, दोनों शक्तियां हैं। लेकिन किसको सहन करो, किसको किसका सामना करो, जहां व्यक्ति है वहां सहन करो, व्यक्ति का सामना मत करो। तो जहां व्यक्ति है वहां सहन करने का मतलब क्या है कि पता नहीं कौन से जन्म का, कौन सा कर्मों का हिसाब किताब है उस आत्मा के साथ। तो अगर पता नहीं कौन सा कर्म का हिसाब किताब है तो वो मुझे चुकतू करना है तो जरूर, तभी तो इतना वातावरण बन गया है। और मुझे और आगे कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। तो कर्मों का हिसाब किताब अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम सहन कर लेंगे, क्योंकि अगर सहन नहीं किया तो हमारा कर्मों का हिसाब किताब और बढ़ जाएगा। तो हमें ज्ञान है कि हमें सहन करना है और अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। लेकिन जब परिस्थिति आती है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो परिस्थिति से घबराओ मत। कोई बात नहीं, बाबा मेरे साथ है। अपनी स्थिति को नीचे नहीं लाओ, परिस्थिति तो आएगी और जाएगी। अपनी स्थिति को नीचे लाया तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। परिस्थिति हमारे ऊपर हावी ना हो, हम परिस्थिति को परिवर्तन करें। पर जहां व्यक्ति की बात आती, व्यक्ति को हम बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। और कैसे खुद को बदलेंगे, उस बात को सहन करके। हम दूसरे को बदलने जाएंगे और ना वो बदलेगा ना हम बदलेंगे, तो परिणाम क्या निकलेगा। इसीलिए उसमें भी परख शक्ति चाहिए, सहन क्या करना है और सामना किसका करना है। और जब हम सही रूप में उस बैलेंस में रहेंगे तब ब्लेसिंग मिलती है। आज्ञाकारी बनने से ब्लेसिंग मिलती है। जब बड़ों ने कुछ कहा परंतु मेरा मन माना नहीं, लेकिन क्या हम उसमें ये सोच सकते हैं कि बड़े जो कहेंगे वो मेरे कल्याण के लिए ही कहेंगे, मेरे अकल्याण के लिए तो नहीं कहेंगे ना। तो क्या मैं उसको उस रूप से निश्चय बुद्धि बन करके जो उन्होंने मुझे आज्ञा दी वो मैं पालन करूं, ये हो सकता है? क्योंकि उसी में कल्याण है। दुनिया में तो मनुष्य अपनी मनमत बहुत चलाते हैं, और यहां बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत अनुसार मुझे चलना है। ब्रह्मा बाबा यहां होते तो क्या करते? मुझे उसी रूप से चलना है, ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम रखना है, और ब्रह्मा बाप जैसे संपूर्ण बने मुझे भी बनना है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में कितना बैलेंस था। बाबा बच्चों के साथ तो छोटा बच्चा हो जाते थे। गुड़िया दी किसने बाबा को, तो बाबा ने बड़े प्यार से उस गुड़िया को उठाया। फोटोज देखते होंगे ना, बाबा को एक डॉल बाबा को दी गई, वो तो बाबा ने इतना प्यार से उस डॉल को उठाया, प्यार करने लगा। पर बाबा को क्या है गुड़िया से मतलब, लेकिन उस जिस आत्मा ने इतना प्यार से दिया, उस प्यार का जैसे रिटर्न दिया। तो बच्चों से बच्चा हो गया और बुजुर्गों से बुजुर्ग हो गया। अब है बुजुर्ग और बच्चा सामने आए तो बच्चे को तिरस्कार करे, ये तो सही नहीं होगा ना। बैलेंस। दादी जी को हम देखते थे ना, दादी जी बच्चों के साथ कैसे छोटा बच्चा हो जाती थी बिल्कुल, और बड़ों के साथ तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते, बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें। हम अनुभवी तो सब हैं, बच्चे होंगे सबके, तो बच्चों के साथ कैसे मिलते हैं और बड़ों के साथ कैसे मिलते हैं। पर दोनों के साथ एक बैलेंस रहे, सबको रिस्पेक्ट देना। आजकल रिस्पेक्ट सब चाहते हैं, बच्चे भी रिस्पेक्ट चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पर दूसरे को सम्मान देते समय खुद का स्वमान ये गंवाना नहीं है। या स्वमान में रहना है, दूसरे को सम्मान नहीं देना है, ये भी सही नहीं होगा। स्वमान में रह करके सम्मान देना, ये बैलेंस है। अपना स्वमान भी गंवाना नहीं है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। दादी जानकी कितना बड़ा स्वमान देती थी, और उस स्वमान में रह करके औरों को भी सम्मान देना है। जो मैं दूसरों को दूंगा वो मुझे रिटर्न मिलेगा, वो आएगा वापस। पर इसलिए नहीं देना है ताकि मुझे वापस मिले, लेकिन ये मेरा निजी गुण हो देने का, सम्मान देने का। मम्मा कभी भी किसी छोटे बच्चे को भी तू तू कह के नहीं बोलती थी, कभी नहीं, तू तुम नहीं, आप। बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी, ये मम्मा की कितनी शुद्ध भाषा थी। बच्चों को भी रिस्पेक्ट उतना ही, क्योंकि खुद सदा स्वमान में रहती थी। तो जो अंदर में हमारी स्थिति होगी वही हम प्रकट करेंगे, और सही बैलेंस यही है। स्वमान में रहो और सम्मान दो, और जैसे हमने स्वमान में रहकर सम्मान दिया तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग मिल जाएगी, हमको भी सम्मान मिलेगा और उतना ही वरदान मिल जाएगा। दिल जीत लिया किसका, तो दिल जीतना हो किसी का, उनसे दुआएं लेनी हो, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखें। और दूसरा, जैसे बाबा कहते योगी हैं हम, योगी की मूड बदलती नहीं है, योगी की मूड एक जैसी होती है। इसलिए योगी और ज्ञानी दोनों के लिए क्या कहा जाता है, एक रस अवस्था। ज्ञानी की परिभाषा क्या है, गीता में भी आता है। ज्ञानी किसको कहेंगे, सच्चा ज्ञानी किसको कहेंगे, जो हर परिस्थिति में समान रह सके, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे कोई मेरी महिमा करे चाहे मेरी कोई निंदा करे। तो मान अपमान निंदा स्तुति, चाहे जीत हो चाहे हार हो, मेरी स्थिति एक जैसी। जो भी दुनिया में अपोजिट्स है उसने हमारी स्थिति न बदले, वो कैसे नहीं बदलेगी, उसके लिए क्या सोचना होगा, ड्रामा में, ड्रामा पर तटस्थ रहना होगा, साक्षी रहना होगा। क्योंकि जो कुछ भी होता है, एक तो नथिंग न्यू, तो ना आश्चर्य लगेगा कोई भी बात में, न कोई प्रश्न उठेंगे कोई भी बात में, तो स्थिति डावाडोल नहीं होगी, एक रस रहेगी। तो स्थिति को एक रस बनाना, ये ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा के लक्षण है। परंतु जो ज्ञानी योगी सच्चा नहीं है, वो हर वक्त मूड बदलता रहेगा। अभी देखो एकदम गुस्सा कर रहा, अभी देखो एकदम ऐसा न्यारा हो गया, शांत हो गया, बात ही नहीं कर रहा, अभी देखो तो मूड ऑफ हो गया, अभी देखो तो जोर जोर से हंस रहा है। योगी ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा। तो हम ज्ञानी भी है तो योगी भी है, हम सन्यासी नहीं है, हम जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर रहे, परिवार में रहते हैं। बाबा ने ये बेहद का परिवार दिया है, हम जब मधुबन कहते हैं ना, मधुबन, तो मधुबन ये दो शब्दों से बनता है, और विदेशी लोग मधुबन की ट्रांसलेशन क्या करते हैं, लैंड ऑफ ये फॉरेस्ट ऑफ हनी, मधुबन, वन माना जंगल, और मधु माना शहद, तो ट्रांसलेशन क्या करते हैं मधुबन का, फॉरेस्ट ऑफ हनी, शहद का वन। अब शहद कहाँ वन कहाँ, दोनों कितना कॉन्ट्रास्ट है। वन माना जंगल, वन माना अकेला, अकेला कोई नहीं साथ में, जंगल में अकेले होंगे। और मधु माना शहद माना एक मधु से तो एक मधुमक्खी से तो मधु नहीं बनेगी ना, कितनी मधुमक्खियां चाहिए मधु को बनाने लिए। तो शहद माना बहुत बड़ी संगठन, बहुत बड़ा संगठन, और वन माना एकदम अकेला। तो जब संगठन में हो तो भी हमारी स्थिति वैसी ही हो, जैसे हम एकांत में हो तो भी हमारी स्थिति वैसी हो। ये नहीं एकांत में उदास हो जाएं और संगठन में बड़े खुश हो जाएं, या संगठन में हम दुखी हो जाएं और एकांत हमें अच्छी लगती है इसलिए संगठन नहीं चाहिए। नहीं, संगठन में भी उतनी खुशी जितनी एकांत में खुशी, इसको कहते हैं बैलेंस। अंग्रेजी में दो शब्द है, एक है सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड माना बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकांत, एकदम एकांत। और दूसरा शब्द है लोनलीनेस, माना अकेलापन। तो एक है एकांत और दूसरा है अकेलापन, दोनों में अंतर है या एक ही बात है? अंतर है, एक ही बात है, बहुत अंतर है। एकांत तो बड़ी प्रिय लगती है, बस एकांत में हूँ, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, अपने विचार सागर मंथन में रहूं, बाबा मेरे साथ है, कितना एकांत। लेकिन लोनलीनेस माना अकेलापन, वो अकेलापन खाने आता है। हाँ, अकेलापन हो एकदम सुनसान तो वो जैसे खाने आता है, डर लगता है अकेलापन। लेकिन हमें कभी भी अकेलापन लगे ही नहीं, क्योंकि अगर मैं अकेली भी हूं तो भी बाबा मेरे साथ है। इसलिए वो अकेलापन बदल करके एकांत बन जाता है। एकांत तो बहुत प्रिय है, एकांत प्रिय तो बनना है, एक के अंत में जाना है, इसको बाबा कहते एकांत। तो वो एक मेरे साथ है तो मैं अकेला नहीं हूं। तो एकांत भी पसंद हो और संगठन भी इतना पसंद हो कि हम सब मिल करके रहते हैं। वन वन की काठी है मधुबन में हम रहते हैं, एक का संस्कार न मिले दूसरे के संस्कार से, लेकिन फिर भी कैसे मिलकर रहते हैं। लोग आते हैं ना, यहाँ शिविर होती है, बठिया हो, ये कॉन्फ्रेंस होती है, नीचे देखो चार चार पांच पांच कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, साधु संत महात्माएं आए हुए हैं नीचे, वो देख रहे हैं, हैरान होते हैं, ये सब कैसे चलता है इनका, इतने प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, ऊपर भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, मनमोहिनी वन में भी चल रहा है, हाँ, और ये मानसरोवर में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है और बड़ा सुंदर चल रहा है, क्योंकि संगठन की शक्ति है। और संगठन की जहां शक्ति है वहां तो बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। तो संगठन हमारा मजबूत रहे उसके लिए भी बाबा हमें बताते हैं कैसे संगठन को मजबूत करो। आज दुनिया में संगठन में रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दो के संस्कारों को समझते नहीं है तो परिवारों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एडजस्टमेंट की पावर ही नहीं है। चलो एक ने माना दूसरे ने कहा, एक ने कहा दूसरे ने माना, दोनों आत्मज्ञानी हो गए। नहीं, मैं तो अभिमान के वश है। तो लोग हैरान होते हैं यहाँ देख करके सब कैसे चल रहा है, तो हम कहते ये संगठन की शक्ति है। तो संगठन की शक्ति किसको कहेंगे? संगठन की शक्ति का मतलब है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें कार्य मिला है, ये भगवान का कार्य है। ये मेरा कार्य तेरा कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है, तो वो कार्य तो महान ही होगा। वो महान कार्य है, इसीलिए खुशी खुशी करना जो भी कार्य मिले। ऐसे नहीं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, जो कार्य मिले, क्योंकि सब कार्य ईश्वर का कार्य सब महान है। और दूसरा संगठन की शक्ति में माना मुझे बदलना है, मुझे पहले बदलना है। मैं दूसरे को बदल नहीं सकता हूं, पर मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब हम ये बुद्धि में धारण करते हैं तो संगठन में रह करके भी न्यारे और प्यारे भी रह सकते हैं। कई लोग कहते हैं आप लोग कैसे रहते हो, हम कहते ऐसे रहते हैं। दादी जी कहती थी कैसे, क्या पूछते हो ऐसे, हाँ कैसे हम सब मिलकर रहते हैं। एक दो को रिस्पेक्ट देना, स्वमान में भी रहना, बालक भी बन जाना, मालिक भी होकर के कार्य करना। कोई यहाँ बॉस नहीं है, कोई थोपने वाला नहीं है, कोई डराने वाला नहीं है, कोई धमकाने वाला नहीं है। सब भगवान के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब ने अपना जीवन भगवान को दिया है, तो हरेक का जीवन कितना श्रेष्ठ है। तो जब हम ये बुद्धि में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सबके ब्लेसिंग के या दुआओं के पात्र बन जाते हैं, सबकी दुआएं मिलती है। दुआएं मांगनी थोड़ी होती है, मुझे दुआ करो, भक्ति मार्ग में मांगते हैं, कहेंगे आप आशीर्वाद दो, मेरे सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद करो। और बाबा कहते हैं आशीर्वाद आप अपने ऊपर करो, मांगो मत। तो ना दुआएं मांगी जाती है, दुआएं कमाई जाती है। आशीर्वाद अपने ऊपर की जाती है और वरदान भगवान से प्राप्त होते रहते हैं। जब भगवान का दिल जीतते हैं तो वरदान ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो वरदान के पात्र भी बनना है, आशीर्वाद अपने ऊपर करनी है और दुआएं देनी है तो मिलेगी अपने आप। दुआएं मांगी नहीं जाती है, पर वो दुआएं तब मिलेगी जब अंदर में दया करुणा ये होगा। हाँ, इसलिए ये साल का नाम ही है दया और करुणा का साल। इसको हम कहते हैं आत्म सशक्तिकरण का साल। तो दया और करुणा, इसी थीम को लेकर के सारे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी सबको दया और करुणा चाहिए, सबको, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो इतना विकारी भी हो, चाहे वो कितना भी क्रोधी हो, चाहे वो कुछ भी गालियां भी देता हो, लेकिन वो भी वास्तव में दया का भूखा है। तो दया का भूखा है, करुणा का भूखा है, कमजोर है, उसको शक्ति दो, नफरत नहीं करो। तो बैलेंस रख करके ब्लेसिंग लेना, सबकी दुआएं अपने आप मिलेगी। अभी नीचे जो कार्यक्रम चल रहा है गीता का भगवान कौन, उसमें भिन्न भिन्न टॉपिक्स ली गई है। आज जो सुबह का सत्र है कि गीता का जो महाभारत दिखाते हैं, महाभारत वो हिंसक युद्ध है या अहिंसक, इस विषय पर आज चर्चा हो रही है। कल कुछ और था, सवेरे कुछ और था, बहुत सुंदर सुंदर विषय बताए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर वो एग्जीबिशन भी लगाई गई है। आप लोगों का आज लास्ट दिन है ना, आखिरी दिन है ना, कल जाना है, कल जाएंगे ना, कल जाने का दिन है। हाँ, तो ज़रूर नीचे जाकर देखना, वो एग्जीबिशन भी देखना, डायमंड हॉल में लगाई हुई है। और कल भी शायद 17 होगा, पता नहीं, लेकिन कितने कार्यक्रम चल रहे हैं उधर मनमोहिनी वन में। आईटी विंग चल रहा है, आईटी के लोग आए हैं। आईटी माना वैसे कहेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर नाम दिया। आईटी का नाम क्या दिया? इनर टेक्नोलॉजी, आंतरिक टेक्नोलॉजी। आंतरिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? अंदर की टेक्नोलॉजी कौन सी? मन बुद्धि संस्कार की टेक्नोलॉजी। बहुत सुंदर रूप है। और फिर मनमोहिनी वन में मेडिकल विंग भी चल रहा है, दूर दूर से मेडिकल से, मेडिसिन से संबंधित डॉक्टर्स सर्जन आए हुए हैं, वो भी अपने कितने सुंदर अनुभव सुना रहे हैं। तो देखो ये कैसे बाबा का कार्य चल रहा है, भगवान का कार्य देख करके सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये मनुष्य की शक्ति नहीं है, है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अभी लोग जब आप लोगों से ज्ञान सुनते हैं तो कहते हैं आप लोग भी बहुत अच्छा सुनाते हो, और वो लोग भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, साधु संत महात्मा वो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन वो समय आएगा जब वो कहेंगे आप ही अच्छा सुनाते हो, आप ही। अभी कहते आप भी। इस नीचे जो सम्मेलन रखा है उसमें वो संतों को बोलने नहीं दिया है, सब ब्रह्मा कुमारी यही बोल रहे हैं। और खास करके वहाँ ये हुबली से आई है सब बहनें, हुबली से, और वो उसमें इतनी माहिर है श्लोक बोलने में, गीता के श्लोक बोलने में बहुत होशियार है। तो अपने भाषणों में वो गीता के श्लोक सुना करके बाबा का सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जो हमारे ज्ञान से जो मिलते हैं ना गीता के श्लोक, वो सुना करके उनका वो अर्थ बता रहे हैं। तो वो विद्वान लोग जो भी आए हैं उनको थीसिस भी दी गई थी लिखने के लिए, वो तो हैरान हो रहे हैं बहनों को देख करके कि ये सब इतनी पढ़ी लिखी, इतना इतना इनको संस्कृत का ज्ञान। वहाँ पर हुबली में ये हमारी सारी बहनें जो है ना सब इसमें होशियार हैं। और हमारे बसवराज भाई तो एकदम आगे हैं इन बातों में। बहुत अच्छा म्यूजियम उन्होंने बनाया है गीता का, भगवान कौन, और बाबा इसी पर ही जोर दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि अगर इसमें आपने विजय पाली तो बाबा की प्रत्यक्षता अवश्य सहज होगी। तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं बाबा की प्रत्यक्षता के, और एक दिन अवश्य बाबा की प्रत्यक्षता होगी, हम सब इसमें कामयाब होंगे। और फिर संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। बाबा आए हैं घर ले जाने के लिए, पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अभी रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन भी कितना समय चलेगा, आखिर तो परीक्षा आएगी ना, बड़ी परीक्षा। अभी बड़ी परीक्षा नहीं आई है, वो अंतिम परीक्षा होगी, और उस पेपर में पास होने लिए बस एक ही तैयारी करनी है, वो तैयारी है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। देही अभिमानी स्थिति है, शरीरी स्थिति, और वो ही हमारी अंतिम स्थिति होगी। अंतमति सो गति, आत्माएं उड़ेंगी अपने वतन में। तो विघ्न विनाशक बन करके परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके, विजयी आत्मा बन करके वापस घर जाना है, यही लक्ष्य रख करके ये भट्टी करने आई हो ना। तो बहुत कुछ पाया होगा, बहुतों के अनुभव सुने होंगे, बहुत कुछ मिला होगा। तो यहाँ से सब भरपूर होके जा रही है ना? हाँ, सब भरपूर होके जा रहे हैं बिल्कुल। और इतनी छाप लगा के जाना जो वहाँ जाकर बिल्कुल एक परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव करो, सच्चा बैलेंस अपने जीवन में अनुभव करो। लोक अलोक परलोक तीनों ही सहेला हो जाए, लौकिक और अलौकिक परिवार का इतना सुंदर बैलेंस बना के रखो, जो लौकिक में भी प्रिय बन सको, अलौकिक में भी प्रिय बन सको, और न्यारे भी बनो और प्यारे भी बनो, ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, बस अब यही अंदर में दृढ़ संकल्प करके जाना, तो देखो बाबा सब मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देंगे, इच्छा मात्रम अविद्या बना देंगे, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भी बना देंगे। बस एक बल एक भरोसा रखो बस। ठीक है, चलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलो सब बाबा की याद में बैठेंगे।